हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोध विदो स्मरणं कुतस्त्वा। स्मरतव्यः सततं विष्णुं, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्ववित्थि निषेदास्यो एतयोर् एव किंकरः। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासन व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा। करारिविन्दे न पदारिविन्दं, मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्र स्यपुटेशयानं, बाणं मुकुंडं मनसास्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबस्वा मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धर्माधवेति। वंशी विभूषितकरा
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ राशि मद भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 16 पहला स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। सुत गोस्वामी के मुखारविंद से निकले हुए इन परम पावन शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं,
तादर्न्योन शोचसी मैक पादम आत्मानं वा वृषलैर्भोक्षमाणम् आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागा प्रजा उतस्विन मघवत्यवर्षति पादर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलै भोक्षमाणम् आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतस्विन मघवत्य वर्षति पादर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलै भोक्षमाणम् आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतस्विन मघवत्य वर्षति।
शब्दात् पादर न्यूनम, पादर मतलब तीन पांव से, न्यूनम मतलब विहीन, शोचसी क्या तुम सोच कर रही शोक कर रही हो? माँ मेरा, यानी कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे तीन पांव नहीं है इसलिए आपको दुख हो रहा है, एक का पादम, सिर्फ एक ही पांव रह गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि तीन पांव नहीं है तो मुझे कितना कष्ट हो रहा, तो मेरे कष्ट को देखकर आपको दुख हो रहा है? या आत्मानम वा वृषलय भोक्षमाण, आत्मानम यानी अपना शरीर, वा अथवा वृषलय अवैध मांस भक्षण के द्वारा, भोक्षमाणम शोषित किए जाने के लिए। आहो सुरादीन हृत यज्ञ भागान, यज्ञ में सुर आदीन यानी देवतागण, हृत यज्ञ यज्ञ से रहित भागान अपने हिस्से से, प्रजा उतस्वित मघवती अवर्षति, प्रजा यानी जीव उत बढ़ता हुआ, स्वित कहीं, मघवती यानी दुर्भक्ष में, अवर्षति यानी वर्षा न होने से। अनुवाद ध्यान से सुनिए। धर्म रूपी बैल पृथ्वी, जो गौ रूपी पृथ्वी है, उनसे कह रहे हैं मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हो या इस बात पर कि कहीं अब आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे, मांस भक्षक जो लोग होंगे वो आपका शोषण करेंगे, आपको खाएंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं कर रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखी के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक एक चीज को बहुत ही स्पष्ट करके बताएंगे। कृपया मेरे साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को गौर से श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यो ज्यो कलयुग प्रगति करेगा त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से विलोप होता जाएगा, ये हैं आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। क्योंकि धर्म के चार भागों में से तीन भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की तीन चौथाई जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित सम्मितियों को जन्म देंगी जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निंदा की जाएगी। इस तरह की श्रद्धा रहित समितियां इस संसार में अच्छे लोगों का रहना दोबर बना देंगी। परमेश्वर में श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, फिर वैश्य, तब शूद्र, तब म्लेच यवन और अंत में चांडाल आते हैं। मानव अनुभूति का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ होता है और चांडाल तो अवनति के अंतिम अवस्था में है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं है, यही सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म या जाति का कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मिलेच्छ बन सकता है और चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब भगवान के साथ संबंध के अनुसार होता है। सामान्यतः मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं हैं, किंतु जो बिना रोक टोक की मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ हैं। शास्त्रों में गौ मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे, म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता 3.14-16 यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार अपील की गई है। सारे जीव ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न जीवों को निरंतर भगवत नाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली चलाई है। इस प्रणाली में जीव अन्न तथा शाक खाते हैं और इनके खाने से शरीर में रक्त तथा वीर्य बनता है और इसी रक्त तथा वीर्य से दूसरा जीव उत्पन्न होता है, किंतु अन्न घास आदि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और उचित वर्षा बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से होती है। साम यजुर् ऋग तथा अथर्ववेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो वे समुद्र से उचित रीति से जल ले एकत्रित करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे सक्रिय रहने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाईघर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपार्जय बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकेंगे। पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए प्रचुर वर्षा की आवश्यकता होगी, अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव इंद्र चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, देवता भगवान के सेवक हैं और बंदी ग्रह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहता है वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े, अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने के लिए विधान है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहता है, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग जानबूझकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
क्योंकि भक्त का जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों के से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। संचित पापों के शमन का साधन यज्ञ ही है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 16, जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। कल हमने देखा कि धर्म और बेल, जो कि मूर्छित अवस्था में है, बेल की उसके तीन पांव जो हैं वो आघात करके काट दिए गए हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी है। उसके साथ साथ जो पृथ्वी है वो भी बहुत ज्यादा दुखी है। वो बेल को इस कंडीशन में देख नहीं सकती है, वो बहुत ज्यादा दुखी है और बेल उससे उसके दुखी होने के कारण पूछ रहा है। जैसे कि कल हमने उसके पहले कारण को, कलयुग का जो पहला कारण है वो क्या है कि हर एक जीव जो है दूसरे से अलग रहना चाहता है। हर कोई जीव जो है वो सेल्फिश होता जाता है। कलयुग के दौर में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब केवल अपनी ही प्रगति के विषय में सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे धन कमाऊं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सुखी रहूं, और किसी के विषय में भी नहीं सोचते हैं। और आज अभी तक इतना जब उसने बेल ने गऊ को कह दिया कि क्या आप इसलिए दुखी हो कि अपने संबंधियों से दूर होने के कारण दुखी हो, और अब उसका उत्तर सुनने से पहले ही वो दूसरे आगे बोलता है, वे कह रहा है पादे न्यूनम शोचसी मैं कपादम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पादे न्यूनम मुझे तीन पांव से वंचित देखकर दुखी हो रही हो, क्योंकि मेरा एक ही पांव है तो एक पांव में मुझे कितना कष्ट हो रहा है, क्या ये सोचकर आपको दुख लग रहा है। वास्तव में भक्तों, ये कलयुग की निशानी है कि कलयुग में धर्म के तीन पांव जो हैं वो प्रायः कट गए हैं। जैसे सतयुग में धर्म जो है वो चार पांव पे खड़ा था, त्रेता में उसका एक पांव कट गया, द्वापर में दूसरा कट गया, और इस तरह करते करते तीन पांव उसके कट गए। और जब अब कलयुग जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है तो अब उसका जो चौथा पांव है, चौथे पांव के ऊपर वो खड़ा था सत्य के ऊपर, परंतु सत्यता भी समाप्त होती जा रही है अब इस कलयुग में। तो ये कौन कौन से पांव हैं उसके? पहला है पवित्रता, दूसरा है तपस्या, तीसरा है दया और चौथा है सत्यता। तो ये जो चार पांव हैं वो कैसे कटते हैं? पहला है तपस्या। तपस्या कैसे करती है? जब कोई नशा करता है तो वो तपस्या नहीं कर सकता। इसलिए पहला चरण जो है तपस्या का, वो नशा करने से नष्ट हो जाता है। और कलयुग में देखते हैं साधारण जीव भी नशा करते हैं। कोई ना चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई बियर पीता है, कोई वाइन पीता है, कोई सिगरेट पीता है, इस तरह से बहुत सारे जीव जो हैं और पीते वक्त उन्हें ये भी नहीं लग रहा होता है कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे होते हैं, किस तरह से हम अपने धर्म के इस स्तंभ को काट रहे हैं। तो पहला, जब कोई नशा करता है तो उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। दूसरा, जब कोई मांस आहार करता है तो उसकी दया नष्ट हो जाती है। जब कोई परिस्त्री संग करता है तो उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जब कोई जुआ खेलता है तो सत्य का नाश हो जाता है। तो कलयुग में प्रायः धर्म के तीन पग तो कट चुके हैं, अब चौथा जो है वो सत्य पर ये धर्म जो है वो टिका हुआ है। तो यही बात धर्म जो है वो गाय से पूछ रहा है, पृथ्वी से, कि क्या आप मेरी दशा को देखकर, मेरी इस दुर्गति को देखकर दुखी हो रही हो। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, ज्यो ज्यो कलयुग प्रगति करेगा त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से विलोप होता जाएगा। क्या विलोप हो जाएगा? सबसे पहले आयु, प्रायेण अल्प आयु। कलयुग में जीवों की आयु इतनी थोड़ी होगी कि वो इस बात का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से मुझे जीवन में प्रगति करनी है। बस केवल इस भौतिक जगत में ही अपनी सुविधाएं अर्जित करते करते समय बीत जाएगा। आयु इतनी थोड़ी होगी, पता ही नहीं चलेगा कि आयु कैसे समाप्त हो जाती है। उसके बाद दया, जीवों के हृदय में दया रहेगी नहीं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है हम देखते हैं कि दया हृदय से समाप्त हो जाती है। कोई किसी के लिए, मतलब हृदय के अंदर किसी के लिए ना ह्यूमैनिटी है और ना ही कोई भावना है, ना ही कोई दया है। सब क्रूरता बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। और स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का क्या कहा जाए कलयुग के जीवों का, मतलब इतना भी उन्हें याद नहीं रहता। एक व्यक्ति एक कमरे से जब दूसरे कमरे में जाता है ना, तो उस रूम में जाकर इसको इसे सोचना पड़ता है कि मैं इस रूम में आया क्यों हूँ। तो ये है स्मरण शक्ति। तो इस तरह से, तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, जो धर्म के सिद्धांत है ना, वो भी धीरे धीरे विलोप हो जाते हैं। क्या? आयु समाप्त हो जाती है, दया समाप्त हो जाती है। हम अगर देखें तो ये सब हमारे साथ हो चुका है। आयु हमारी समाप्त हो गई है, आधे से ज्यादा जिंदगी खत्म हो गई, अब बोनस पे जी रहे। दया खत्म हो गई है, हृदय के अंदर किसी भी जीव के लिए कोई दया नहीं है। और स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। और आगे है नैतिक धर्म, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। तो ये धार्मिक सिद्धांत क्या है? शास्त्र कहता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो साक्षात भगवान ने कहा। और ये धर्म करने का क्या प्रयोजन है? अगर हम धर्म करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है? धर्म इसलिए किया जाता है ताकि हम इस भौतिक जगत की आसक्ति से खुद को छुड़ाकर भगवान से अपने प्रेम को पुनः निर्माण कर सकें। धर्म का केवल इतना ही अर्थ है कि आपका भगवान से टूटा हुआ रिश्ता जुड़ना चाहिए। धर्म धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म करो तो ऐसा करो कि उससे आपको अपवर्ग की प्राप्ति हो। वह जगह जहाँ से आपको वापस आना ना पड़े, उस जगह को प्राप्त करने के लिए धर्म किया जाता है। और यदि आप अपने इन भौतिक जगत के सारे धर्मों को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से करो, लेकिन यदि भगवान के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, भगवान में आपकी आसक्ति नहीं हो रही है, पुनः प्रेम का निर्माण नहीं हो रहा है, तो दैट इज जस्ट लेबर, यूजलेस लेबर। शास्त्र कहता है कि धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक सेन कथा सुय नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि आप अपने धर्म को अच्छे तरीके से करो, लेकिन यदि कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, कृष्ण की कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं होती, तो वो सारा का सारा धर्म इज यूजलेस लेबर, श्रम एव ही केवलम। तो धर्म करने से क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? सूत गोस्वामी कहते हैं, अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। अभी अगर आप अपने धर्म को अच्छे तरीके से कर रहे हो तो उसका मीटर क्या होना चाहिए? हरितोषण। उससे देखना चाहिए कि वो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो कार्य चाहे कोई भी हो, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो समझो आप धर्म कर रहे हो। जैसे एक बार कृष्ण अपने सारे मित्रों के साथ वृंदावन में गैया चराने के लिए गए और गैया चरा रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, बहुत देर हो गई, वो उनको बहुत भूख लगी। जो उन्होंने अपने घर से प्रसाद लाया था वो तो उन्होंने सुबह को खा लिया था, अभी क्या था कि बहुत देर हो गई थी, अभी वो तब तक वन में ही थे। तो भगवान के सारे मित्रों ने कहा, कान्हा हमें बहुत भूख लगी है। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसा है तो तुम ऐसा करो, वो सामने देखो उस तरफ कुछ ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियां मुझे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रही हैं। आप जाइए उनसे कहिए कि कृष्ण को भूख लगी है, कृष्ण के लिए प्रसाद दो। तो वो सब वहां पर गए तो उनके जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया, बोला आपको नजर नहीं आ रहा कि हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये सब सामग्री जो है वो यज्ञ के लिए है, तो हम इसको जुटा नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से भागो, हम आपको ये प्रसाद नहीं देंगे। तब सारे सखाओं ने जाके कृष्ण को कहा, कृष्ण उन्होंने तो मना कर दिया। फिर कृष्ण ने कहा, अच्छा मना कर दिया तो तुम जाओ उनकी पत्नियों से मांगो। और जब सारे ग्वाल बाल पत्नियों के पास गए और उनसे कहा कि कृष्ण को भूख लगी है, उसे प्रसाद खाना है, तो इतना सुन के ही जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगा, उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं निकलने लगी और उन्होंने कहा, अच्छा कृष्ण प्रसाद मांग रहे हैं, कृष्ण को भूख लगी है, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करने का हमें अवसर मिला है। तुम सारी सामग्री ले जाओ, सब कुछ जो कुछ बनाया था, लड्डू पेड़े मिठाइयां और दाल भात, ये सब उन्होंने कृष्ण के लिए दे दिया। और फिर वैसे शास्त्रों के अनुसार तो ये बहुत बड़ा अपराध है कि पत्नी अपने पति की आज्ञा ना माने, परंतु जब कोई कृष्ण को संतुष्ट करता है, कृष्ण संतुष्ट है सर्वम संतुष्ट, हम जानते हैं कि कृष्ण जो है वो संपूर्ण जीवों को संतुष्ट करने वाले हैं। तो यदि कोई जीव कृष्ण को संतुष्ट कर देता है तो सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। यही वास्तव में धर्म की पराकाष्ठा है, यही धर्म है। और यहाँ जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है तो धर्म समाप्त हो रहा है, धार्मिक सिद्धांत समाप्त हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात बताई यहाँ पर कि परमेश्वर में श्रद्धा के अनुपात ही के अनुसार ही मनुष्य की कोटियां होती हैं, जो मनुष्य की कैटेगरीज बनती हैं। आपकी भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आपकी कोटि बनेगी, आपका लेवल के अनुसार। क्या है श्रद्धा का लेवल? जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जो भगवान से बहुत बहुत प्रेम करता है, अपने प्राणों से भी अधिक भगवान को मानता है, वह है वैष्णव। और वैष्णव के बाद नंबर आता है ब्राह्मण का, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, उसके बाद मलेच्छ, यवन, और अंत में क्या आते हैं? चांडाल आते हैं। चांडाल के विषय में आप जानते हैं? चांडाल वो होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं। तो वैदिक सभ्यता में उसको सबसे गिरा हुआ माना जाता है चांडाल। उससे गिरे हुए व्यक्ति को वैदिक सभ्यता में प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। गौ हत्या या गौ मांस भक्षण करने वाला किसी भी वैदिक सभ्यता का अनुयायी नहीं है। अतः जो गौ मांस का आहार करता है उसको वैदिक सभ्यता से बहिष्कृत किया गया है। तो धर्म रूपी बेल गौरूपी पृथ्वी से कह रहे हैं पादय न्यूनम शोचितम मैकपादम। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पांव के कारण बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहा हूँ, इसलिए आपको दुख हो रहा है, या फिर आत्मानम वा वृष लैर भोक्षमाणम, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे कलयुग लोग अवैध मांस भक्षण करेंगे। ये जो शब्द है वृष लैर का मतलब होता है अवैध मांस भक्षण। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे कि अवैध मांस भक्षण क्या होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा सामान्यतः मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते हैं। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं है, किंतु बिना रोक टोक के मांस भक्षण करने वाले म्लेच्छ हैं। शास्त्रों में गौ मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करेंगे। अवैध मांस भक्षण क्या है? जो शास्त्रीय आदेश अनुसार नहीं है। वास्तव में भक्तों, जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उसमें हर प्रकार के कार्य करने की एक विधि बताई है। यदि किसी को मांस आहार करना है तो वैसे तो शास्त्रों में मांस आहार वर्जित है। इवन जो क्रिश्चियंस हैं वो भी क्या कहते हैं, दाओ शुड नॉट किल, किसी भी जीव को की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो हमारी वैदिक सभ्यता में भी मांस आहार वर्जित है, परंतु यदि अनिवार्य हो जाए तो उसका एक तरीका बताया गया है कि मांस आहार करने वाले को सबसे पहले जो देवी काली हैं उनको उनका यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ में बलि दी जाएगी और उसी मांस को आहार कर सकते हैं, ये जो करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, क्या क्या खुली छूट दी गई है, कोई भी रोक टोक नहीं है मांसाहार। लेकिन फिर भी शास्त्र में गाय और बैल इनके मांस आहार को वर्जित किया गया है, उनको तो विशेष प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो जीव क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कसाई घर खोल कर बैठे हुए हैं और इससे सारे पशुओं को, गाय को, बैल को, सबको हत्या करके उसका भक्षण किया जा रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है। तो ये बैल जो है वो गौ से क्या कह रहा है कि आत्मानम वा वृष लैर भोक्षमाणम। आपको यही सोचकर दुख हो रहा है कि कलयुग में सब लोग आपके साथ ऐसा करेंगे, आपका शोषण करेंगे, आपको कष्ट देंगे, आपका आहार मांसाहार करेंगे, इसलिए आपको दुख हो रहा है। या फिर आहु सुरादिन हृत यज्ञ भागान, या फिर आपको ये सोचकर दुख हो रहा है, सुरादिन यानी देवता गण जो हैं वो हृत यज्ञ से रहित हो जाएंगे, यज्ञ का भाग नहीं निकालेंगे। जीव लोग यज्ञ करना बंद कर देंगे और देवताओं का भाग नहीं निकलेगा। वास्तव में भक्तों, जिस प्रकार हम इस गवर्नमेंट में, इस भौतिक जगत में रहते हैं और हमें टैक्स देना पड़ता है अपनी संपत्ति के अनुसार, उसी तरह ये भगवान की प्रकृति है, उसका टैक्स होता है यज्ञ। हर एक जीव को यज्ञ करना पड़ता है ताकि जो देवतागण हैं वो प्रसन्न होते हैं और जो हमारी इच्छित वस्तुएं हैं वो हमें प्रदान करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकेल विषय, अगर आप यज्ञ करोगे तो आप सारे किल विषयों से, सारे अपराधों से आप मुक्त हो जाओगे, जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन भुंजते त्वगम पापम ये पचन्ति आत्मकारण, अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे और केवल अपनी संतुष्टि के लिए ही कार्य करते रहोगे, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, तो आपको अपराधों को भोगना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो भौतिक जगत में आपको जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं देवताओं के द्वारा, वो केवल यज्ञ संपन्न करने के लिए होते। भगवान बताते हैं 3.14 में, अन्नात भवंती भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कि अन्नात भवन्ति भूतानि, जीव जो है वो किस पर आश्रित है, अन्न पर आश्रित है। और अन्न कैसे होता है, पर्जन्यात अन्न संभव, वर्षा से ही अन्न होता है। और यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, अन्य के जो बारिश है वो कैसे होती है, यज्ञ करने से। और यज्ञ कर्म समुद्भवम, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न है। वास्तव में यज्ञ हमारे नियत कर्म है। तो यहाँ पर बेल जो है वो गौ माता से पूछ रहा है, आहो सुरादिन यज्ञ हृत भाग्या, कि आप इसलिए दुखी हो रहे हो कि जो देवता है उनको यज्ञ की भाग नहीं मिलेगा, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। वास्तव में भक्तों, सारे वेदों में, ऋग साम यजुर्वेद में यज्ञ करने का आदेश हुआ है, क्योंकि जब यज्ञ होता है तभी वर्षा होती है, और वर्षा से जो अन्न बनता है, जो सब्जियां शाक ये सब बनता है, उसी से जीव को पुष्टि मिलती है। जीव का शरीर जो है उसमें रक्त और वीर्य बनता है, और इसी से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो यह आवश्यक है कि यज्ञ किया जाए। लेकिन और मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जब तक जब आहुति डाली जाती है ना, यज्ञ कुंड में आहुति डालते हैं ना, तो उससे सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, समुद्र से जल उचित रीति से एकत्रित करते हैं। समुद्र का पानी, समुद्र में हम देखते हैं करोड़ों लीटर पानी है, लेकिन उसका एक गिलास भी पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो खारा है। लेकिन जब जीव यज्ञ करता है तो उस यज्ञ की वेदी से प्रसन्न होते हैं सूर्य देव, और जो समुद्र का जल है उसको पर्याप्त मात्रा में उठाते हैं और बादल बनाते हैं, और जब प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। और जब बहुत सारी वर्षा होती है तो मनुष्यों और पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है ना, फिर अनाज उत्पन्न होता है, सब्जियां, फल, और इस तरह जीवों के आगे सक्रिय रहने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस आजकल भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, म्लेच्छगण हैं, अन्य पशुओं के साथ बैलों और गायों को भी मारने के लिए कसाईघर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे, और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपाजे बिना। अब आप सोचिए कि आज अनाज उगाने के लिए वो जो गऊ और बैल की हत्या कर दी जाती है, उनको मतलब उनको कसाई घर में डाल दिया जाता है और यज्ञ नहीं किए जा रहे, तो लोग क्या सोच रहे हैं, जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, जो मिलेच हैं, वो सोचते हैं कि पशुओं की आवश्यकता नहीं है, मतलब इन पशुओं को मार के खा जाओ और अन्न उत्पाद करने की आवश्यकता नहीं है, खाली फैक्ट्रियां बढ़ाओ, बहुत ज्यादा ये जो भौतिक इन्वेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा करो, तो अनाज की और इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पशु भी खाना चाहते हैं, अगर वो पशुओं पर भी आधारित रहना चाहते हैं, तो पशुओं का जीवन भी तभी संभव है जब घास होगी, जब ये पृथ्वी जो है वो अन्न उपज करेगी। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकेंगे। पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए प्रचुर वर्षा की आवश्यकता है, अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवताओं की कृपा पर आश्रित रहना होगा, और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जाता है। तो यदि कोई पशु भक्षण भी करना चाहता है तो भी उसे यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पशुओं के लिए भी तो वनस्पतियों की और घास इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो वो तभी संभव है जब वो यज्ञ करके सूर्य देव को, इंद्र देव को, वरुण देव को प्रसन्न करते हैं। वास्तव में भक्तों, ये यज्ञ करने का विधान इसलिए है क्योंकि जीव इस भौतिक जगत में ना जाने कितने करोड़ों वर्षों से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है। अगेन अगेन यू टेक बर्थ एंड डेथ देन डेथ, वापस से जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम। तो शास्त्र में यज्ञ का आदेश इसलिए किया गया है ताकि जो विद्रोही जीव है वो श्रद्धा विहीन जीवित रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ना विद्रोह करूं भगवान से और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करूं। तो ये यज्ञ का विधान इसे दिया गया है कि धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर वो मुड़ेगा, और इस तरह शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने का विधान है ताकि जब वो यज्ञ करेगा तो देवता उन पर प्रसन्न होंगे और इस तरह से धीरे 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 वो उन्नति करेगा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो जीवों के हृदय से ये यज्ञ करने की भावना समाप्त हो रही है। वो क्या सोचते हैं कि बस हम कैसे भी करके अपराध करते जाएंगे और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते जाएंगे, तो वो केवल खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसे यज्ञ करना प्राय बंद हो गया है। और जीवन के पग पग पर बहुत बहुत पाप करता है, लेकिन जो लोग जानबूझकर भक्ति में लगे रहते हैं वे पापों से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम भगवान की भक्ति मिलने लगेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते रहेंगे, तब तक हमारी पाप की वृत्ति खत्म नहीं होगी, हृदय के अंदर जो अनर्थ है वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई है कि जो वैष्णव है, जो भक्त है, उनको संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त का जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। भक्त का जीवन ही यज्ञ है, इसलिए उसको ये जो भौतिक वेदों में जो यज्ञ लिखे हुए वो संपन्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन किंतु जो इंद्रिय भोग के सकाम कर्म में लगे रहते उन्हें संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता है। जो इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते ना उनको यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें ये यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा यज्ञ करने की आवश्यकता है, जो कि शास्त्र में बताया गया, कृष्ण वर्णम कृतुषा कृष्णम सागोपांगस्तपाषदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा। कि इस कलयुग में जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, ज्यादा बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं वो तो बुद्धिहीन होते हैं। भगवान कहते हैं कामस्तस्ते हृतज्ञाना, जिनकी इच्छा होने इंद्र तृप्ति की इच्छा होने जिसकी बुद्धि को मार डाला है वो तो बुद्धिहीन होते हैं। तो फिर वो जो है वो बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो ऐसे यज्ञ करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान सुमेधस होते हैं वो कौन सा यज्ञ करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय ही, प्राय संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने केवल संकीर्तन यज्ञ करने का ही आदेश दिया है कि इसी संकीर्तन यज्ञ करने से चाहे कोई भी हो, चाहे वो भक्त हो, चांडाल हो, यवन हो, म्लेच्छ हो, हर एक व्यक्ति जो है वो लाभान्वित होता है। क्योंकि यज्ञ करने का वास्तविक मकसद, वास्तविक उद्देश्य क्या है, यज्ञो वह विष्णु, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान के शास्त्रों का, भगवान की भगवत गीता का, भगवान के उपदेशों का प्रचार करते हैं, तो उसी से भगवान प्रसन्न होते। भगवान ने स्वयं लिख कर दे दिया कि नचित अस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। तो इसलिए हमें भगवान के इस उपदेश को प्रचार करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, यही यज्ञ है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ, भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और आगे वो बेल रूपी जो धर्म है वो पृथ्वी रूपी गऊ से कह रहे हैं, गऊ रूपी पृथ्वी से कह रहे हैं, क्या आहु सुराधीन सिद्ध यज्ञ भागा, कि क्योंकि कलयुग में देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिला इसलिए दुखी हो। या प्रजा उतस्विन मगवत्य वर्षिता, या फिर प्रजा को अधिक वर्षा न होने के कारण अनाज नहीं मिल रहा है इसलिए ज्यादा दुखी हो, तो मुझे आपके दुखी होने का कारण बताओ। तो आगे भी धर्म जो है वो बहुत बहुत पूछेंगे उनसे। वास्तव में भक्तों, ये जो चीजें वो पूछ रहे हैं वो ही कारण है हमारे इस कलयुग में दुखी होने के। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मांस भक्षण कर रहे हैं, जो धर्म के चार तीन पांव हैं वो कट गए हैं, और इसके अतिरिक्त लोगों ने यज्ञ करने बंद कर दिए हैं, इसी के कारण ही हम सब दुखी हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि कलयुग आ गया है तो हम दुखी होके जीवित रहें। हम यदि इन सारे आदेशों का पालन करेंगे, यदि धर्म के चारों पैरों को कटने नहीं देंगे, यदि तपस्या, पवित्रता और सत्यता और दया के स्तंभ को बनाए रखेंगे, मांस आहार नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पियेंगे, पर स्त्री संग नहीं करेंगे, तो धर्म के सारे पग जो हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि अवैध मांस आहार नहीं होगा तो दुखी नहीं होंगे। यदि यज्ञ करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो देवता प्रसन्न होकर हमें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह से वर्षा बहुत अधिक होगी जिसके कारण जीवों को दुखी नहीं होना पड़ेगा। तो हम सबको इसी बात का प्रचार करना चाहिए, और यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। यही हमें आदेश मिलता है गुरु महाराज के द्वारा कि हम इसी तरह से धर्म का प्रचार करें, ताकि कलयुग जो है वो हमको अपने प्रभाव से दुखी ना कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।